लौकिक हो या पारलौकिक हो, स्वार्थ के बिना कोई किसी को नमस्कार नहीं करता। कौन किसको नमस्कार करता है, कौन किसके चरण छूता है, कौन किसको सम्मान देता है, लौकिक में भी। लोग तो यहां तक कहते हैं काम पड़ने पर गधे को भी भाव बनाना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर माने उसके भी पांव पड़ने पड़ते हैं। तो फिर यहां तीन लोग के नाथ के चरणों में क्यों झुक रहे हो, कुछ प्रयोजन होगा कि? हाँ प्रयोजन तो है, लेकिन प्रयोजन क्या है? वंदे तद्गुण लब्धे, आप जैसे गुणों की प्राप्ति, यही एकमात्र मेरा प्रयोजन। फिर बाद में आगे बढ़े, चार पंक्तियों की चर्चा हुई, उन चार पंक्तियों में सारभूत बातें बतला दी गई और उमा स्वामी आचार्य ने अंतिम लाइन में बता दिया जो इन तीन लाइनों में कही गई बातों की श्रद्धा करता है, इनका ज्ञान करता है, इनका आचरण करता है, वो सम्यक दृष्टि। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष का मार्ग इन सब बातों के ज्ञान श्रद्धा आचरण पूर्वक बनेगा। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आपको व्रत पद की गति इन सबका पालन करना पड़ेगा, लेकिन मुक्ति प्राप्ति के मार्ग में ये सब बातें आएगी। मोक्ष प्राप्त करने के पहले रास्ते में ये सब बातें धीरे 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 करके आएंगी और हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। बहुत सारे विषय थे जिन सबकी चर्चा बहुत संक्षेप में कल अपनी यहाँ हुई है और अभी हम प्रथम अध्याय यहाँ से बात को आगे बढ़ाते, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा है ना, जिससे अधिकतम विषय कवर कर सकती, ज्यादा से ज्यादा मैं चर्चा कर सकूं आपके पास में, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। समय सीमित है, सूत्र बहुत हैं, हम सब सूत्रों की चर्चा करेंगे धीरे धीरे। बात प्रारंभ करते हैं पहले सूत्र से, मैं सूत्र बोलूंगा आपको रिपीट करना है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है तत्वार सूत्र के, 357 सूत्र किसी ने नहीं पढ़े हो तब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये पढ़ा हुआ सुना हुआ होता है लोगों का, ऐसा सूत्र है। जगत के जीवों को सबको परिचित है मोक्ष का मार्ग क्या है, सब जीवों को मुक्ति की प्राप्ति करनी है, मोक्ष का मार्ग कौन सा है, कौन से रास्ते से मुक्त हो सकते हैं, हम सब कौन से मार्ग पर चल रहे हैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए बताओ, और वहां स्वामी आचार्य कौन सा रास्ता बता रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा मोक्ष मार्ग के नाम पर व्रत करो उपवास करो या कुछ नहीं कहा ऐसा, मोक्ष मार्ग के नाम पर यहाँ वहां स्वामी आचार्य ने ऐसा नहीं कहा कि इतनी माला का जाप करो, मोक्ष मार्ग के नाम पर वहां स्वामी आचार्य ये नहीं कह रहे कि इतने शास्त्रों का अभ्यास करो। अरे सभी तो लिखा तो है, ज्ञान चारित्राणी चारित्र भी लिखा है और ज्ञान भी लिखा है। आप सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन के गीत गाते हो, ज्ञान और चारित्र को पूछते नहीं हो, या तो सम्यक दर्शन के गीत गाते हो या ज्ञान की बात करते हो, चारित्र की बात ही नहीं करते हो। बोलो, लोगों को ऐसा लग सकता है, लेकिन भाई यहाँ सम्यक चारित्र की बात कही है, सम्यक चारित्र क्या चीज है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, ये समझना पड़ेगा। ये तीन मोक्ष के मार्ग नहीं, पहले तो सूत्र का अर्थ देखो, सूत्र में क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्राणी, चारित्राणी ये प्लूरल है, बहुवचन है ना? और आगे एक शब्द दिया मोक्ष मार्ग है, ये एक वचन है। तो कल ये तीन कहकर के आगे मोक्ष मार्ग नहीं, ऐसा कहना चाहिए था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी यहां बहुवचन लिया और आगे मोक्ष मार्ग है कहा तो उमा स्वामी आचार्य क्या कहना चाहते हैं? ये तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है सूत्र में। किसी ग्रामर के जानकार व्यक्ति से यदि सूत्र को दिखाओगे तो कहेंगे ग्रामर में मिस्टेक है, लेकिन उमा स्वामी आचार्य से बात करके यदि वो ग्रामर वाला व्यक्ति देखेगा तो कहेगा नहीं ये बराबर। अच्छे अच्छे व्याकरण संस्कृत जानने वाले लोगों को दिखाओ तो कहेगा ये सूत्र गड़बड़ है, तो व्याकरण की दृष्टि से ठीक है। लेकिन फिर उनको बताओ उमा स्वामी आचार्य की गहराई कितनी थी तो फिर वो कहेगा अब बराबर है। क्या है चक्कर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष मार्ग है लेकिन मिलकर के, अलग अलग नहीं, ये एक मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग है ये एक वचन कहकर के कह दिया। ऐसा नहीं हो सकता कोई सम्यक दर्शन के मार्ग से मोक्ष चला जाए, कोई सम्यक ज्ञान के मार्ग से मोक्ष चला जाए, कोई सम्यक चारित्र के मार्ग से चला जाए। कोई कहे कि चारित्र का मार्ग तो मुझे कठिन लगता है, एक काम करो मैं तो श्रद्धा ज्ञान के मार्ग से चला जाऊंगा। अब कोई कहे श्रद्धा और ज्ञान पता नहीं कैसे होता, भैया हमें तो भूखे रहना अच्छा लगता है, हम तो उपवास वाले मार्ग से चले जाएंगे, चारित्र से चले जाएंगे, श्रद्धा ज्ञान को छोड़ दो। कहते हैं भाई साहब तुम पहले एक तरह का स्वरूप समझना और दूसरी बात ये समझ लेना कि ये तीनों अलग अलग नहीं होते, ये तीनों जब मिलते हैं तो एक मार्ग होता है, तीनों मिलकर के एक मार्ग है। समझ लो ऐसा नहीं है कि आधा काम किसी और से हो जाए, आधा काम किसी और से हो जाए, तीनों साथ चलेंगे मोक्ष मार्ग में। आधा रास्ता कोई पार कर ले, आधा रास्ता कोई पार कर ले, आधा रास्ता कोई पार कर ले, ऐसा नहीं चलता है। अच्छा हमारे को यदि शादी होनी है मान लीजिए, कोई शादी के लिए कंपलसरी क्या है? दूल्हा और दुल्हन प्रसाद के लिए, ये कंपलसरी है ना, इसके अलावा तो नहीं है कुछ भी। तो साथ फेरे दिखाना जरूरी है मान लीजिए। अब वो दोनों सोचे कि यार दोनों को साथ साथ चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक काम का चार मैं लगा लेता हूँ, 300 लगा लेना, तो दोनों मिलकर के पूरे नहीं कर सकते क्या? साथ नहीं हो सकता, मिलकर के नहीं कर सकते कि नहीं दोनों को ही साथ साथ चलना पड़ेगा और पूरा ही चलना पड़ेगा। यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस मोक्ष के मार्ग में तीनों को ही चलना पड़ेगा। शुरू में तीनों चलेंगे और अंत तक तीनों चलेंगे, ये मोक्ष का मार्ग है। ऐसा नहीं हो सकता कि शुरुआत किसी एक चीज से हो, बाद में कोई दूसरा आ जाए, फिर रास्ते में कोई तीसरा पकड़ ले रहे, ऐसा नहीं है। जब मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है तो तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, चलते हैं तो तीनों एक साथ चलते हैं, और मुक्ति की प्राप्ति होती है तो तीनों की एकता का नाम, तीनों की पूर्णता का नाम ही मोक्ष। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, ये सब मिलकर के मोक्ष मार्ग कहलाते हैं। लौकिक में भी कई उदाहरणों के इस बात को देखा जा सकता है। श्रद्धा है, ज्ञान है और आचरण है, प्रवृत्ति है। कुछ ग्रंथों में तो इनके लिए इस तरह के एग्जाम्पल दिए, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में। जंगल में आग लगी हो, भयानक आग लगी हो, और यदि वहां तीन तरह के व्यक्ति हैं, एक अंधा है, एक पंगू है जिसका हाथ नहीं है और हाथ पांव नहीं है, और एक आलसी है, प्रमादी है, आग लगी है, और यदि उन्हें जंगल से निकलना है, यदि तीनों अलग अलग है तो तीनों जल रहेंगे, और तीनों यदि एक साथ में है, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो तीनों जंगल की आग से निकल करके बाहर हो सकते। अंधा व्यक्ति, पंगू जिसके हाथ पांव नहीं है, अपाहिज है, और एक प्रमादी आलसी है, तीनों चाहिए, तीनों का साथ यदि हो तो जंगल से पार हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ कहना चाहते हैं, इस संसार रूपी जंगल से यदि तुम पार होने की इच्छा रखते हो तो यदि श्रद्धा नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान नेत्र के बिना तो अंधे के समान होगा क्या, और यदि चारित्र नहीं होगा तो तू अपाहिज के समान होगा, और श्रद्धा नहीं होगी तो तू आलसी के समान होगा। समझो कैसी स्थिति है, श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र, इन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो काम नहीं चलेगा। तीनों चाहिए भैया। दवाई भी सब असर करती है, जब भरोसा हो, विश्वास हो। बिना विश्वास के डॉक्टर की दवाई नहीं लगती। जिस डॉक्टर पर आपको विश्वास नहीं हो ना, बहुत लोग कह रहे हैं लेकिन आपको अंदर से भरोसा नहीं है, कई लोग कह रहे हो बहुत अच्छा डॉक्टर हो, आपको दवाई असर नहीं करेगी। विश्वास जहां होता है 50% तो तबियत वहीं ठीक हो जाती है। मैं तो कई बार ऐसा देखा है, मैंने कई पेशेंट ऐसे तबियत बहुत खराब और डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, और जिनके ऊपर विश्वास है उस डॉक्टर के पास में पहुंचे, डॉक्टर मिल गया, उसने देख लिया और तबियत आधी तो ठीक हो गई, अभी दवाई वाई कुछ नहीं ली। भरोसा है हमें डॉक्टर साहब आपके ऊपर, बस आप मिल गए ना, अब कोई चिंता नहीं। इतना विश्वास होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है, श्रद्धा, भरोसा पहली चीज। दूसरी चीज क्या, औषधि का ज्ञान। दवाई का ज्ञान भी जरूरी है और दवाई का सेवन वो भी जरूरी है, और विश्वास ये भी जरूरी है। दवाई से विश्वास ये श्रद्धा है, दवाई का ज्ञान ज्ञान है, और दवाई का सेवन ये चारित्र है। तीनों में से एक भी मिसिंग कर दो। विश्वास तो बहुत है और नॉलेज भी है दवाई की, पता है कौन सी लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, पर ले रहे नहीं तो तभी ठीक होगी ही नहीं, और ले भी रहा है और भरोसा भी है लेकिन थोड़ा सा ज्ञान मिसप्लेस हो गया। सुबह वाली शाम को ले रहा है, शाम वाली सुबह ले रहा है, भूखे पेट वाली भोजन करके ले रहा है, भोजन करने वाली भूखे पेट ले रहा है, सुबह उठ करके लेने वाली रात को सोते समय ले रहा है। तो ज्ञान जरूरी है कि नहीं, तो क्या होगा बताओ, श्रद्धा भी पाओ ले भी जाए, ज्ञान भी जरूरी है। अरे श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों का ऐसा संगम है, इन तीनों की ऐसी जुड़ी है कि इनके बिना मोक्ष मार्ग होता नहीं। कौन समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं उमर स्वामी महाराज? मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को अपनाना पड़ेगा। अब देख लो, अब जब हम ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों को अपनाना पड़ेगा, तो ये कहता है यार तीनों को अपनाना पड़ेगा, चलो देखते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं चलता है, तीनों एक साथ होंगे। ये मेरे साथ चारित्र तो बाद में होता रहेगा। अरे चारित्र अंदर में होता है, तुम चारित्र काम बाहर में देख रहे हो। देखो पंडित जी, यहाँ तक श्रद्धा और ज्ञान का सवाल है, हम तैयार हैं। देखो हमें आचरण की बात मत बताना, थोड़ा सा क्या है यहाँ की लाइफ स्टाइल आपको पता नहीं है, इंडिया के आए हो आप, यहाँ हमारा चलता नहीं है बच्चे। ये आप इस चारित्र की बातें मत करो आप, ये यहाँ जिस देश में हम लोग रहते हैं, इस देश में ये सब नियम नियम पलते नहीं है, तो नियमों के पालन में भी आप हमें उलझाओगे तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। आप यदि ज्यादा नियमों के पालन की बात करोगे तो धीरे धीरे लोग कम होने लगेंगे, समझ लेना। हम कहते हैं भैया सुनो, सुन तो लो एक बार, पालन करना नहीं करना बात की बात है, क्या पालन करना है? तुम जिन जड़ की क्रियाओं के पालन करने की बात करते हो वो क्रियाएं तुम्हारी है ही नहीं। तुम जिस प्रवृत्ति को पालन करने की बात करते हो वो प्रवृत्ति तुम्हारी है ही नहीं, वो आचरण तुम्हारा है ही नहीं, वो पालन तुम्हारा नहीं होता है। क्या मतलब था, समझ में नहीं आई कुछ बात? भैया एक बात बताओ, जीव के गुण बताओ कौन कौन से हैं? जीव के और
क्या बताया,
जानना देखना चैतन्य और
चारित्र
दर्शन अनंत मत लगाओ इनमें, ठीक है ना? क्योंकि जो अनंत होता है ना वो तो भगवान के है, और अपने पद की बात करते हैं अपन। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर, ये सब जो है आत्मा के गुण है, अनंत है गुण आत्मा में, अमूर्त भी आत्मा का गुण है। मैं बात करता हूँ विशेष गुणों के संदर्भ में, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय का जानना कितना जरूरी है। मतलब इंद्रिय द्रव्य गुण पर जाएगा, स्वरूप हमारे को पता नहीं हो, हम जाने नहीं द्रव्य क्या होता है, द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्यों के गुण कितने होते हैं, तो फिर समझ में नहीं आएगी बात। मैं कह रहा हूँ जीव के बारे में, जीव द्रव्य उसका जानना देखना चारित्र श्रद्धा है ना सुख, ये सब जीव के विशेष गुण हैं। विशेष गुण उसे कहते हैं जो अपने अपने द्रव्यों में हो। विशेष गुण कैसे कहेंगे मोहित भाई? जो अपने अपने में हो, ठीक है, इधर उधर नहीं हो। अच्छा, जीव के जो गुण है वो पुद्गल में नहीं होंगे, पुद्गल के जो विशेष गुण है वो जीव में नहीं होंगे, सेपरेट है ये सब गुण। इतनी बात क्या है, आइए कठिन तो नहीं है कुछ भैया? सबके अपने अपने गुण है, पता है आपको पुद्गल के गुण धर्म धर्म वगैरह नहीं मालूम, कोई बात नहीं। जीव के गुण जो विशेष गुण है वो सेपरेट जीव में है, दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य ये सब हमने जीव के गुण बतलाए। पुद्गल के गुण बताओ, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप रस गंध स्पर्श ये सब पुद्गल के गुण है, सेपरेट पुद्गल में है, ये गुण जीव में नहीं होंगे, बराबर इंडिविजुअल है ये सब चीजें। चलो अच्छा, अब एक बात बताओ, जीव में जो ये दर्शन जो नाम का गुण है, जैसे सबने दर्शन कह रहे हैं, ये दर्शन नाम का गुण ये जीव में होगा कि पुद्गल में? पक्का सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन नाम का जो गुण है ये जीव में होगा, जीव का गुण है ना? सम्यक ज्ञान जीव का गुण है, जीव में होगा। और सम्यक चारित्र पक्का? तो जब चारित्र की चर्चा चलती है तब तो शरीर देखते हो, मैं इसलिए विशेष गुण आपको बता रहा हूँ कि चारित्र नाम का गुण आत्मा का गुण है, तो चारित्र नाम का गुण आत्मा का गुण है, इसलिए चारित्र आत्मा में होता है। और जब जब तुमने दर्शन की चर्चा चलती है तुम कहते हो आत्मा में होता है, जब तुमने ज्ञान की चर्चा चलती है तुम कहते हो आत्मा में होता है, और जब तुमने चारित्र की चर्चा चलती है तब तुम कहते हो क्या क्या खाता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ये क्या है ये सब? चारित्र किसमें देख रहे हैं हम लोग? चारित्र नाम का गुण शरीर में, सम्यक दर्शन आत्मा में, सम्यक ज्ञान आत्मा में, सम्यक चारित्र शरीर में, ऐसा ऐसा बारीकी से समझना पड़ेगा विषय थोड़ा सा। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को जो मोक्ष मार्ग कहा है, ये दो द्रव्यों की क्रिया को मिलकर के मोक्ष मार्ग नहीं कहा है। महेंद्र भाई, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों को मिलकर के जो मोक्ष मार्ग कहा है, तो ये एक द्रव्य की क्रिया है, ये जीव के मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है, पुद्गल की नहीं। ये जीव का परिणाम है, ये जीव की परिणति है, ये जीव की पर्याय है जहाँ मोक्ष मार्ग होता है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणाम आत्मा में होता है, श्रद्धा भी आत्मा में होगी, ज्ञान भी आत्मा में होगा और चारित्र भी आत्मा में। कितनी बड़ी गलती होती है हमारे से बोलो, जब जब चारित्र की चर्चा चलती है तो हम कहा देखने लगते हैं, जब जब चारित्र की चर्चा चलती है हमें क्या देखने लगता है? अरे पंडित जी क्या बताऊं, इनका तो चारित्र बिल्कुल नहीं, और इनका चारित्र बड़ा विचित्र है। अभी समझ लो हम भी थोड़ा सा यहाँ कुर्ते पजामे की जगह जी धोती और दुपट्टा ऐसा ओढ़ लेना, आत्मा हो जाएंगे, सोच लो आप, तो थोड़ा सा भाई आचरण हो जाए ना, रात को पानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत सारे बाजार का नहीं, मर्यादा का भोजन, और हो सकता है आप लोगों के घरों में खाना खाने के अंदर दिक्कत आने लगे तो थोड़ी रहेंगे साहब, तो इनका तो साहब क्या भजन है भाई, इनका चारित्र कौन सा चारित्र है? बाहर का चारित्र, ऐसे चारित्र नहीं है, ये विशेष गुण है। आत्मा का गुण शरीर में नहीं होता, कितनी बड़ी ब्लंडर मिट्टी हो रही है ये, आत्मा के गुण को शरीर में देख रहे हैं और शरीर के गुण से आत्मा को पकड़ रहे हैं। बोलो ये दो द्रव्यों की भिन्नता यदि नहीं हो, यदि ये वेद विज्ञान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? ये बहुत बड़ी चीज है, ये मोक्ष मार्ग सबसे पहले वेद विज्ञान का नाम है, निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं लेश निदान। ये मोक्ष मार्ग है। निज को निज पर जान, सबसे पहली चीज शरीर से भिन्न चेतन तत्व उसका श्रद्धान फर्स्ट स्टेप पर भरोसा। श्रद्धा को सबसे पहले लिया यहाँ, ज्ञान को बाद में लिया, चारित्र को उसके बाद में लिया, इनका भी क्रम है। श्रद्धा पहले, ज्ञान बाद में और चारित्र उसके बाद में। और हम लोग क्या करते हैं, चारित्र सबसे पहले। क्या सबसे पहले? तुम तो चारित्र लो जी, कुछ नहीं, तुम तो व्रतों का पालन करो, क्या रखा है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो होता रहेगा, उसमें क्या दर्शन। श्रद्धा श्रद्धा तो अपने आप हो जाती है। तुम तो एक काम करो, व्रत ले लो, तुम तो पालन कर लो थोड़ा सा। ये कह रहे हैं चारित्र तीसरे नंबर पर होता है, श्रद्धा ज्ञान पूर्वक चारित्र सम्यक कहलाता है। जरा आप कहेंगे कि आप अभी तो कह रहे थे कि क्यों एक साथ होते हैं, यहाँ एक साथ होते हैं, लेकिन श्रद्धा के बदले बिना ज्ञान और चारित्र को सम्यक नहीं कहते। क्या कहा? हाँ, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, दूसरों को कैसे पता लगेगा? तो अपने को जो पता लगेगा वो अपने अंदर से पता लगेगा कि बाहर से पता लगेगा? अंदर अंदर होता है चारित्र। हाँ, जिसके अंदर में चारित्र प्रकट होता है उसका बाहरी जीवन अच्छा हुए बिना नहीं रहता। इसका मतलब बाहरी जीवन तो अच्छा होगा, बाहरी जीवन तो बेटर होगा, निश्चित रूप से बेटर होगा, लेकिन कल जिनका बदलाव अंदर से हुआ होगा, ठीक है ना? हाँ, यदि अंदर से जीवन अच्छा नहीं हुआ है तो बाहर में कितना भी पालन कर लो तो आपको दम नहीं। बाहर के दिखावे में, बाहर के प्रदर्शन में धर्म नहीं है। मैं केस लॉन्च करने लग जाऊं, परिग्रह का त्याग कर दूं, शर्म डालू, बोलो पीतांबर रक्तांबर न मानू, कौन कौन से ऊपर से वस्त्र धारण कर लू, वेश धारण कर लू, चोटी रखने लग जाऊं, लंगोट धारण कर लू, कुछ कुछ ना कुछ ऐसे भाई है जितने ऐसे माथे पर तीन तिलक लगा करके चलूं, बोलो क्या क्या रूप हो सकते हैं, बड़े धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं होते हैं, कमंडल पीछे लटका लिए अपन ने, एक जोड़ा लेकर के चल दिए, न मालूम क्या क्या, काशी में जाकर के डुबकी लगाओ, गंगा स्नान करो, धर्म के नाम पर उल्टे लटक जाओ, तपश्चरण करते रहो, पेड़ पर उल्टे लटक जाओ, सर के बंद और लेट लेट करके न मालूम कहाँ कहाँ की पर्वतों के चक्कर लगाते रहो, वंदना करते रहो, कितने तपस्वी धर्मात्मा लोग दिखते हैं, कुछ नहीं है धर्म। सबका निषेध कर रहे हैं, अंदर से बदलाव हुआ यानी, बाहर से परिवर्तन तो बहुत हुआ। बाहर के परिवर्तन की वजह बताऊं आपको, बाहर का परिवर्तन तो दूसरों को दिखाने के लिए होता है। बाहर से जितना धर्मात्मापन दिखता है वो सब धर्मात्मापन दूसरे को दिखाने के लिए है। बाहर से हो तो अंदर हो, कोई ये जरूरी नहीं है। और अंदर यदि होगा तो बाहर में होगा ही होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? असली चीज अंदर से है। अंदर में यदि श्रद्धा बदलती है, ज्ञान बदलता है, चारित्र यदि अंदर में कचाई चौपड़ी का अभाव होता है, जो रियल चारित्र है, अंदर से अनंतानुबंधी का चला जाना, अप्रत्यय ज्ञान का चला जाना, ये रियल चारित्र है जो अंदर में होता है, तो बाहर में चारित्र दिखे बिना रहेगा नहीं। ऐसी बात है भाई साहब, पैकिंग और माल वाली बात है, समझ लो आप। बाहर की पैकिंग दिख करके माल मत खरीदना, बाहर की पैकिंग देख करके माल की तरफ आकर्षित मत होना, बाहर के पैकिंग को देखकर सारे दुनिया आज पैकिंग की तरफ भाग रही है। दिखते बहुत अच्छे हैं, दिखते बहुत अच्छे हैं, दिखते बहुत अच्छे हैं। अरे पैकिंग तो बहुत अच्छी है, अंदर में माल कैसा है, ये तो देखो कीमत अंदर के माल की है, बाहर में पैकिंग सुंदर हो और अंदर में माल खराब हो तो क्या वैल्यू है उसकी। अब उल्टा लगाओ, अंदर में माल अच्छा हो तो बाहर में पैकिंग अच्छी होगी होगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1 करोड़ का डायमंड का पैक खरीदे और किसी झोले में लटका करके दे दे आपको। माने यदि इतना महंगी यदि आप चीज खरीदते हैं तो उसका जो केस आएगा ना तो कम से कम 25-50 डॉलर से कम का तो नहीं होगा। क्यों ना खाली केस की बात करता हूँ उसके, खाली बॉक्स की, तो बॉक्स भी इतना कीमती होगा। और कोई व्यक्ति सोचेगी यार बॉक्स इतना सुंदर है ये देख करके खरीदे तो ठगाया जाएगा। पैकिंग से माल का माल को नहीं पहचाना जाता, बाहर के लोग माल को पहचानते हैं तो पैकिंग तो बाहर में अच्छी होती ही होती। ये जो बाह्य आचरण दिखाई देता है ये बाह्य आचरण माल नहीं है, ये बाह्य आचरण पैकिंग। अणुव्रत महाव्रत है, देश व्रत गुण व्रत अष्टमूल गुणों का पालन, पंच अणुव्रतों का पालन, जो जो भी 28 मूल गुणों का पालन, समितियों का पालन, गुप्ति समिति, ये सब जो चीजें हैं, मुनिव्रत अंगीकार करना, श्रावकों के व्रत ले लेना, ये सब क्या है? ये सब पैकिंग है। मैं इन सब का निषेध नहीं कर रहा हूँ। अरे असली माल लेना होगा तो पैकिंग का निषेध कैसे करेंगे? मैं इनका निषेध नहीं कर रहा हूँ मुकुंद भाई। कोई व्यक्ति यदि गलत समझने लगे कि ये तो इन सब क्रियाओं के विरोधी है, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं तो इन क्रियाओं का सच्चा स्वरूप बताता हूँ कि आप अकेले क्रिया देखते हैं तो वो श्रद्धा ज्ञान के बिना क्रिया शून्य है। कौन समझना? श्रद्धा और ज्ञान के बिना ये क्रिया बिल्कुल शून्य है, किसी काम नहीं आएगी। और यदि श्रद्धा ज्ञान सच्चा है तो बोले ये सारी क्रियाएं सार्थक। अंदर में यदि परिवर्तन हो गया है तो सब क्रियाएं काम की है मोक्ष मार्ग में, और अंदर में परिवर्तन नहीं है तो फिर जय कुछ भी कर लो, 9वें ग्रेड तक चला जाता है ये जीव बिना कमने दर्शन के। बोलो आप, सीमा है उसकी, मैक्सिमम लिमिट है। मणिव्रत धार अनंत वार अनंत वार अनंत वार पीछे का मंडल लेकर गई, मणिव्रत अंगीकार करके ग्रेनेट को तक चला गया, 9 ग्रेनेट तक चला गया। सोचो जरा क्या स्थिति हुई होगी। चारित्र पालन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन वो सिर्फ पैकिंग थी, बाहरी पैकिंग थी। बार बार पे देखता है मूल माल की खबर नहीं, ऐसा ही तो था, ऐसा ही तो था। देखो आदिनाथ मोक्ष गए, उनका भी जीवन ऐसा ही था। देखो उन्होंने भी उपवास किए थे, देखो उनका भी जीवन ऐसा ही था। देखो उनके हाथ में ऐसे दिखते थे, उन्होंने भी परिंदे का त्याग किया था, मैंने भी इनका त्याग कर दिया है। देखा देखी जरा नहीं होता। मुझे याद आता है एक प्रसंग, हमारे पंडित जी सुनाया करते थे, जंगल में कुछ लोग जंगल से सफर कर रहे थे, जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने नाइट होल्ड किया, रास्ते में नाइट होल्ड किया तो वो उन्होंने ठंड बहुत थी और जंगल में रुकना था, तो उन्होंने चारों तरफ से कुछ कचरा वगैरह इकट्ठा किया, रात को इकट्ठा की लकड़ी वगैरह इकट्ठी की और कुछ वो ऐसा जलती हुई थी माची वाची से उन्होंने उनको जलाया, क्या आग जला करके बैठे वहां और जला करके बैठे और सब बड़ा शांत से उष्णता में वो बैठे गर्मी में, अपने रात उन्होंने निकाली। इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी क्रिया को उसी पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर देख रहा था। क्या 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 हो रहा है तो उसने बराबर देखा। अब क्योंकि नीचे आग जल रही थी, सर्दी तो बहुत थी, वो भी चिढ़ रहा था, उसको बहुत आराम मिला, जल रही तो ये बहुत अच्छी चीज है, वो तो चले गए। दूसरे दिन फिर रात हुई, ठंडा मौसम था, अब क्या करें, बोले वही कल वाली बात याद आई, क्या करें। उसने भी वही किया, इधर उधर देखा, रात को लकड़ी कागज इधर उधर सब इकट्ठा करके सब ला करके जो जो देखा जरा देखा था सब कर लिया। बोले यार क्या था, बोले इसके अंदर कोई ना कोई चमकती हुई चीज आ रही थी उसने, क्या जाने बोले कुछ ना कुछ चमकती हुई चीज डाली थी, बोले क्या करे अभी चमकती हुई चीज कहाँ मिलेगी, तो जुगनू चमक रहे थे इधर उधर कहीं,
क्या
पकड़ लाया पकड़ करके, बोलो क्या होगा काम होगा कि नहीं होगा, ये देखा देखी क्रिया का काम है ऐसा। आप यदि उनके देखा देखी क्रिया का पालन करना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अंदर की खबर तो है नहीं और बाहर दिखता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर अंदर का श्रद्धान नहीं दिखता है, हमने कृषि यानी जीवों का श्रद्धान बदलवाए, अभिप्राय बदल गया है, चिंतन बदल गया है, सोच बदल गई है, हमने कृषि यानी जीवों को किसी भी एंगल को देखने का नजरिया बदल जाता है, ज्ञानी हो जाते हैं। और फिर बाहर में आचरण आचरण कुछ जो जगह होता है धीरे धीरे बदलता रहता है, चलता रहता है, श्रद्धा बदल गया, ज्ञान होता है, समझ होती है, हमने ज्ञान कहलाता है, जो आचरण होता है वो हमने चारित्र कहलाता है। जितना ज्ञान और जितना आचरण है, ये ज्ञान और आचरण सम्यक दर्शन के बिना सच्चा नहीं कहलाता, सारा का सारा मिथ्या है, जितना पालन करोगे मिथ्या है। मिथ्यावृत्ति जी उपवास करे, मिथ्या चारित्र और समृष्टि अनुवृत्ति उनका पालन करे, बोले सब में क्या है, बड़ा भेदभाव आपके यहाँ, कैसा धर्म है उत्पटन, एक व्यक्ति करे तो झूठा मिथ्या चारित्र और दूसरा व्यक्ति करे तो सब में क्या है, क्या कहता है भाई साहब, उसके पास में श्रद्धा है। ये तो बिल्कुल ऐसी हालत दिखाई देती है कि वो ज्ञान आता है मेरे को, कौन सा तो दृश्य ख्याल में आता है आंखों के सामने, आपको कहूंगा तो आपको भी फटाफट ख्याल में आ जाएगा, क्योंकि तब चित परिचित अनुभूत से है वो, है ना, दूसरे ग्रह से आया था वो प्राणी और जहां करके उसने देखा कि कोई कागज का कोई ऐसा चीज दी और खाने को मिल जाता है, तो उसने कागज देने का प्रयास किया, कुछ नहीं मिला उसको, फिर देखा कि अरे वो कुछ अलग तरह का है, उसके ऊपर गांधी जी की फोटो छपी है, बोले गांधी जी के फोटो वाला यदि कागज होगा तो मिलेगा, तो गांधी जी की फोटो वाले कई अखबारों में इधर उधर जो पेपर थे उनको इकट्ठा करके ले गया कि भैया पकौड़े खाने हमारे को, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बोलो, क्या चक्कर है, ये ऐसी स्थिति है हमारी, हमारा जो आचरण है हमारा जो व्यवहार है, मूल चीज की खबर नहीं है अपनी, उसमें जो बेसिक चीज क्या है, बच्चों के नकली नोट भी उसी तरह के दिखाई देते हैं, खेलने वाले समझदार व्यक्ति पहचानता है कि नकली क्या है और असली क्या है, और ना समझ व्यक्ति ठगाया जाता है। इसी तरह से ये जो बाह्य चारित्र है, इस बाह्य चारित्र को ज्ञानी और अज्ञानी दोनों जीव पालन करते हैं, अज्ञानी पालन करता हुआ ठगाया जाता है और ज्ञानी समझदार पहचान लेता है कि ये सच्चा है और ये झूठा है। बोलो, बहुत सावधानी की जरूरत है, यहाँ श्रद्धा की बात कह रहे हैं भैया, श्रद्धा को संभाल करके रखना, श्रद्धा का मोक्ष मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, दुनिया में श्रद्धा के लुटेरे बहुत मिलेंगे, सबसे ज्यादा बड़े लुटेरे यदि दुनिया में कहीं हैं तो वो मिलेंगे आपको श्रद्धा के लुटेरे। जानते हैं श्रद्धा के लुटेरे क्या होते हैं, आपकी श्रद्धा को लूट लेंगे। कई लोग मिलते हैं यहाँ का तो मुझे पता नहीं, इंडिया में तो पाखंड बहुत चलता है, और जो लोग थोड़े से अब उनको अंधविश्वासी तो वो अपने आप को तो मानते नहीं है, लेकिन जो होते अंधविश्वासी लोग हैं उनको थोड़ा सा कुछ कह दो तो ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा सारी समझ लो आप, मैं आप लोगों को पता तो नहीं, मेरे को हाथ देखना आता है, हैं नहीं मालूम ना किसी को, हाँ पता होगा कि नहीं चाहिए किसी को, ट्रेन में यदि आप ऐसा लेकर के बैठ जाओ ना किसी का हाथ सामने लेकर के तो चारों तरफ भीड़ लग जाएगी आपकी, थोड़ा बहुत आपको कुछ आता हो नहीं आता हो जो कुछ भी, लेकिन बातें बनाना यदि आपको आता है तो समझ लो तो चारों तरफ आपके दिन लगी रहेगी, बस ऐसा ही है, दो चार मंत्र तंत्र आप जानते हैं, किसी दुखी जीवों को आपने देख लिया पकड़ लिया और आपने कहा कि सुनो ऐसा मंत्र का जाप करो इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मैं एक मंत्र बताता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ इससे। भाई साहब ये श्रद्धा को लूटने वाले लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे, वी आर अलर्ट, सावधान रहना। स्वयं में फर्क नहीं होगा, स्वयं के बाहरी चरित्र भी होगा।
हम जो कर रहे हैं वो बाहर है या
अरे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना जितनी प्रवृत्ति है वो सब सिर्फ व्यवहार मात्र है, बाहरी व्यवहार मात्र है, सच्चा धर्म नहीं है। फर्स्ट स्टेप है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक दर्शन माने आत्मा की अनुभूति, सम्यक दर्शन माने चौथा गुणस्थान, सम्यक दर्शन माने सच्चे देवगुरु धर्म का स्वरूप समझना, सम्यक दर्शन माने सात तत्वों की श्रद्धा। तत्वा श्रद्धानम कहने वाले हैं यहाँ, अभी तत्वों के नाम नहीं पता और चारित्र देखो तो बहुत ऊंचा, जिनके सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है और कह रहे हैं सम्यक चारित्र है तो कैसे होगा। तो पहले सम्यक दर्शन, पहले सम्यक ज्ञान और फिर जो भी आचरण होगा। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है सम्यक दृष्टि यानी जीवों का सर्व आचरण सम्यक चारित्र, सर्व आचरण सम्यक चारित्र, जो प्रवृत्ति है सम्यक चारित्र है, और मिथ्या दृष्टियों की सर्व प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र। बोलो मान ये जो सम्यक शब्द जोड़ा है ना चारित्र के पहले, ज्ञान के पहले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये जो सम्यक शब्द जोड़ा है ये दर्शन के पहले भी है, ज्ञान के साथ में भी लगाना और चारित्र के साथ में भी लगाना। आप लोगों को वो कहानी शायद मैंने पहले कभी तत्वार सूत्र की चर्चा करते समय जब कभी पहले किया हो तो सुनाई हो, ये तत्वार सूत्र महाशास्त्र जब इसकी रचना हुई तो द्वयास नामक एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के यहाँ जो हुआ स्वामी आचार्य आहार करने के लिए गए थे, उस ब्राह्मण के यहाँ आहार करने के लिए गए तो सुनाई थी, क्योंकि मैंने पहले आठ कर्मों की चर्चा की थी शायद आई थिंक तत्वार सूत्र के आधार से। अच्छा तो वो जो ब्राह्मण था उसके यहाँ उमा स्वामी आचार्य आहार करने के लिए आए, जब आहार ग्रहण करने के लिए आए तो आहार ग्रहण करने के उपरांत जब वे जा रहे थे तो उन्होंने दीवार पर लिखा हुआ देखा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कच्ची दीवार 2000 साल पुरानी बात है, गांव में मकान हुआ करते थे, हाथ से लिख दिया करता था, वहां जो श्रावक रहता था उस मकान में वो रोजाना जैसे कोटेशन वाक्य अच्छे अच्छे सुभाषित सुंदर वाक्य रोज मिटाता था, रोज बदलता था, लिखता था, अच्छा लगता था उसको। मुनिराज ने क्या देखा, यहाँ लिखा है दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, मुनिराज ने उसके पहले सम्यक जोड़ दिया, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मिथ्या भी हो सकती है और सम्यक भी हो सकती है, उन्होंने सम्यक जोड़ दिया, मुनिराज चले गए। श्रावण जब घर आया तो उसने देखा कि ये सम्यक किसने जोड़ा यहाँ, तो पता लगा कि मुनिराज आए थे यहाँ आहार के लिए, वो लिख करके गए। बहुत गजब बात है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात की तरफ, सच्चा होना चाहिए वो आचरण दर्शन ज्ञान चारित्र श्रद्धा सम्यक सब सच्चा होना चाहिए, मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। वो दौड़ता दौड़ता उनके पास में चला और उन मुनिराज के पास में जाकर के पूछा, अब देखना आगे के सूत्र। उन्होंने शिष्य ने पूछा, अभी अभी अपनी बात तो बाद में बताऊंगा धीरे धीरे, मैं तो बताता हूँ प्रक्रिया कैसे चली होगी इस तत्वार सूत्र की रचना की। तो कहा जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पुत्र तो वो लेकर के गया अपने साथ में कि महाराज आपने ये लिखा लेकिन ये सम्यक दर्शन क्या होता है, जाकर के पूछा उन्हें सम्यक दर्शन क्या है, तो वहां स्वामी आचार्य ने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ठीक है दूसरा सूत्र बन गया। फिर शिष्य ने पूछा कि ये कैसे होता है, बोले तन निसर्गा अधिगम अध्वा, निसर्ग जो अधिगम होता है। बोले आपने कहा तत्वार श्रद्धान तत्व क्या है, तत्व कौन से है, बोले जीवा जीवात्र बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम, बोले कैसे जाने इसको, बोले नाम स्थापना द्रव्य भाव से संन्यास है, नाम स्थापना द्रव्य भाव से इनको जानो, ये जानने के उपाय क्या होंगे, बोले प्रमाण में अधिगम है, प्रमाण और नए से जाना जाएगा। बोले क्या क्या बातें जानेंगे इन सब के बारे में? बोले निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानते है। बोले बहुत सारी हो गई, इतने ही और भी है। बोले क्या? ये सब संख्या क्षेत्र स्पर्शन का अंतर भगवान का उद्देश्य। बोले साहब इस सबको तो कैसे जान पाऊंगा? ये ज्ञान से पूरे को क्या है? बोले सती शताब्दी मैंने पर ये नाम ज्ञान जिसका आपने पांच पांच बता दिए, इनमें सच्चे कौन से? बोले सत्प्रमाण है पांचों सच्चे। तो हमारे कौन से? अरे आपके परोक्षम, ये तुम्हारे। तो बाकी ये क्या है? ये प्रत्यक्ष मान्य, बाकी बचे हुए प्रत्यक्ष है। आप देखो शिष्य एक एक प्रश्न करता गया और एक एक सूत्र की रचना होती चलेगी, पूरे तत्व और सूत्र की रचना। एक एक शिष्य का प्रश्न और उमा स्वामी महाराज के एक एक जवाब, इस तरह से पूरे तत्व और सूत्र की रचना होगी। तो सम्यक शब्द जुड़ा है किसके पहले? दर्शन के पहले, श्रद्धा के पहले, ज्ञान के साथ में अपने आप लगाना, आदि दीपक है वो, चारित्र के साथ में अपने आप लगाना, श्रद्धा के साथ भी सम्यक, ज्ञान भी सम्यक और चारित्र भी सम्यक। तो ये ज्ञान और चारित्र का जो सम्यक बना है ना, ये श्रद्धा के सम्यक बने पर डिपेंड करता है। अंतर कुछ नहीं है। देखो जितना ज्ञान पहले था, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में ज्ञान कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं है। क्या कहा मैंने? कुछ अलग बात कहता हूं आपसे। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद ज्ञान जितना था उतना ही रहेगा, कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं है। उससे पहले ज्ञान को मिथ्या कहते थे और अब ज्ञान को सम्यक कहते हैं। चारित्र में तो विशेष परिवर्तन आ जाएगा, बाहरी चारित्र में भी ऐसा नहीं कहते हम, लेकिन पहले पालन करता था तो मिथ्या चारित्र कहलाता, तो अब वही करेगा तो सम्यक चारित्र कहलाएगा। ये क्या बात है? श्रद्धा के बेस पर, श्रद्धा मोहर है, श्रद्धा सील है। श्रद्धा की यदि सील लग गई है तो ज्ञान और चारित्र सम्य हो गए। क्या है ये चक्कर? ये अटेस्टेड कॉपी है, समझ में आ रही है बात? जब तक ये सील नहीं लगी थी ना, तब तक आपकी वो ट्रू कॉपी नहीं थी। बुरे कह रहा हूं क्या? वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। और वही जेरोक्स ये मोहर लग गई तो वैलिड होगी। एक नंबर भी बदलेगा नहीं उसने मार्कशीट में, मार्कशीट में जितने नंबर है उतने ही रहेंगे, जो डिवीजन है वही रहेगा। एक नंबर भी कम ज्यादा नहीं उसने, सब कुछ है। लेकिन मोहर लगी तो सच्चा, हम और नहीं है तो झूठा। ये है श्रद्धा। समझ आता है पॉइंट क्या कहते हैं? तो चलो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग, समझ में आया सूत्र? याद हुआ आप लोगों को मोक्ष का मार्ग क्या है? बता सकते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और इतने धीरे धीरे बोलने से हो जाएगा वैसे मोक्ष। उसमें क्या हो गया? मोक्ष मार्ग के लिए ज्यादा चीज बोलना पड़ेगा क्या? ऐसा तो नहीं ना चलेगा। चलो कोई बात नहीं। क्या? बिल्कुल क्या आगे कहने वाले हैं वैसे? नेक्स्ट जो सूत्र है, नेक्स्ट में कह दिया है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। हाँ, अभ्यंतर चारित्र क्या है? शायद आपने भी चर्चा की, अभ्यंतर चारित्र क्या है? अभ्यंतर होना आंतरिक चारित्र, इंटरनल। वो क्या है? अनंतानुबंधी का अभाव, अप्रत्यय ज्ञान का अभाव, प्रत्यय ज्ञान का अभाव, संजरण का अभाव। ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अनंतानुबंधी का अभाव तो बाद में करते रहेंगे नहीं सम्यक दर्शन के लिए। अपन तो एक काम करो, पहले प्रत्यय ज्ञान का अभाव करके चारित्र ले लो। नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं होगा। ये बात तो इस तरह की बात हो गई कि जिस तरह से कोई व्यक्ति ये कहता है कि यार मैं 2-3 साल हो गए मेरे को टेंथ का एग्जाम देते हुए क्लियर नहीं हो रहा है, एक काम करो कि टेंथ को तो छोड़ो, पहले अपन ट्वेल्थ कर लेते, बाद में टेंथ देखेंगे। फिर अभी थोड़ा सा इसको छोड़ लेते, स्किप करके अपन आगे बढ़ते। नहीं हो सकता, अनंतानुबंधी पहले जाएगी। अंदर की सच्चाई छूटने वाली बात है भाई साहब, अंदर में अपनापन छोड़ने वाली बात है, अंदर में मोह छोड़ने वाली बात है। अंदर में दर्शन मोह चला जाता है और अनंतानुबंधी चली जाती है, उसका नाम चारित्र है। चारित्र आत्मा की पवित्रता का नाम है, चारित्र आत्मा की निर्मलता को कहते हैं। शरीर की क्रिया को चारित्र नहीं कहते, रात्रि भोजन क्या चारित्र नहीं कहलाता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो रात्रि भोजन नहीं करता है। मध्यमास मधु का त्याग ये चारित्र नहीं कहलाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के मध्यमास मधु का त्याग होता है। पहले छुप चुके होते हैं, ये सब शराब नहीं पी सकता, फिर वो मांस भक्षण नहीं कर सकता, शहद नहीं खा सकता। बोलो ना, बहन जी ने बताया था शहद में तो क्या होता है, शहद तो बहुत नॉर्मल चीज है, उसमें तो क्या है, शराब में तो नहीं आता है, नशा आ जाता है, हनी 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 मध्य मध्य नहीं मधु, मध्य मतलब होता है शराब और मांस नॉनवेज, और मधु मतलब शहद मधुमक्खियों से जो निकलता है ना, बी से जो वो हनी बी, तो ये जो निकलता है उसमें जितने तरह जीवों का घात होता है उसको निकालने के लिए उसके छत्ते बनते हैं, आपने देखे होंगे बहुत जगह पर। तो क्या करते हैं, एक जाल लगाते हैं ऐसा उसके ऊपर, कवर करते हैं उसको, उसको पकड़ने वाले स्पेशल होते हैं लोग। नॉर्मल व्यक्ति तो उसके ऊपर यदि पत्थर भी मार दे कुछ ऐसा हो जाए तो जिंदा नहीं बच सकता, मौत के अलावा कोई उपाय नहीं, इतनी खतरनाक होती है वो। उस पे जाल लगाते हैं और नीचे से आग जलाते हैं, जलाते हैं और तड़प तड़प करके वे मरती हैं। फिर उनको उस जाल में लेकर के उनका जूस निकालते हैं और रस टपकता है। क्या हाँ
आप एक डॉक्यूमेंट देखा था, उसके अंदर में जो ऑक्यूपेंसी उसको नॉन वायलेंट तरीके से निकालते
हैं, उनके जो अंडे तो गैस क्या पहले उनको, लेकिन हमें बहुत सारी छोटी छोटी सी मधुमक्खियां जो चल नहीं सकती है, जोड़ नहीं सकती है, वे सब वही रहेगी और वो बेचारी जहाँ रहती है सुसु पटी भी वही करती है और उनका झुंडा है वो उनके निकले हुए नहीं अंडे निकले हिसाब से खाने वाले कुछ भी मानती हो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है उसके पूर्व आकार कहा है। जैन दर्शन ये कहता है एक इंद्री से चार इंद्री तक के सब धन समूर्चन होते, तो समूर्चन जीवों के अंडे नहीं होते, माता पिता नहीं होते, है ना, तो वो एटमोस्फियर से होते हैं, वातावरण से होते हैं, ऐसा ही स्वरूप है उनका। तो अब तक जैन शास्त्र ये कहते हैं, फिर आप कहीं सारे दिखते तो है जो, तो कहते चींटियों के भी अंडे दिखते हैं। धवला ने ऐसा प्रश्न उठाया कि सारी चींटियों के अंडे देखे हैं आप कहते हुए समूर्चन होते हैं, तो कहा नहीं वो उनका पूर्व आकार है चलने फिरने के पहले। कुल मिलाकर के महाहिंसा से बनते हैं, महापाप से वो होता है, इसलिए उसका त्याग एक श्रावक के लिए करने योग्य, जैन के लिए करने योग्य है। सम्य दर्शन की बात को दूर की, जैनी हो और मांस भक्षण करे ये संभव नहीं। और कोई यदि जैन साहब हैं मान लो, और यदि वे मांस भक्षण करते हैं और शराब पीते हैं, तो आप उनको कह सकते हो जैन साहब अपने नाम के आगे पे जैन लगाना बंद करो, ये नहीं चलेगा। जैन होकर के नॉनवेज खाए ये बात नहीं चलेगी, जैन होकर के शराब पिए ये बात नहीं चलेगी, जैन होकर के एग खाए ये बात नहीं चलेगी। या तो आप जैन लिखना बंद कर दो, भूल जाओ कि आप जैन हो बस। कोई व्यक्ति पूछे कि आप कौन से धर्म वाले हो, तो कभी भूल करके भी ये मत कहना कि मैं जैन हूं, हिंदुस्तान हूं, भैया मुझे तो पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं तो आ गया यहां गद्दी पे टपक गया। तो बात तो कर रहे थे हम अंदर से बदलने की, जो सामने चारित्र है वो अनंतानुबंधी के अभाव का नाम, कषाय है अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी रूप, जब इसका अंदर से अभाव होता है तो सच्चा चारित्र प्रकट होता है, क्योंकि वो कक्षाएं मिट गई है अंदर से, तो होगा चारित्र। चारित्र में निर्मलता आती, निर्मलता को चारित्र कहते ना, तो किसकी प्रवृत्ति, किसकी निर्मलता, किसकी प्योरिटी? आत्मा की। आत्मा की प्योरिटी का नाम चारित्र है, वो सबसे चारित्र होगा, वो अंदर में होता है। इसलिए जब चारित्र अंदर में होता है तो बाहर में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मान लो आप बाहर में शुद्ध सात्विक दिखता है व्यक्ति, बाहर में अनिति अन्याय करता हुआ नहीं दिखता है, धोखाधड़ी बेईमानी करता हुआ नहीं दिखाई देता है। मैं समझता हूँ बहुत बातें हुई सूत्र के संदर्भ में, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए अपने को। मैं चर्चा कर सकता हूँ सब दिन सिर्फ एक ही सूत्र के संदर्भ में, मैं चर्चा कर सकता था पूरा शिविर अपना पूरा आयोजन सिर्फ मंगलाचरण के ऊपर, लेकिन यदि ऐसा करेंगे तो फिर मुझे लगता है सत्वर सूत्र तो आगे चलाना ही है, तो फिर आगे कितने सालों तक चलाएंगे, है ना? सत्वर सूत्र चलाना है ना, तो देखेंगे जो भी होगा, यदि कुछ बनाओ बना तो धीरे धीरे बढ़ेंगे इसको, तो अपन आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है ना? यदि आप लोग रहे या हम रहे या हमारा आना हुआ, क्योंकि भविष्य की तरफ जाना नहीं चाहिए अपने को, वर्तमान देखो जितना हो जाए तो अच्छा है। सम्यक दर्शन कितना, सम्यक दर्शन कितने कहे, ये कैसी है? सम्यक दर्शन थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, बिल्कुल न्यू कमर से भी हूं, पहली बार आया हूँ, सुना हूँ सम्यक दर्शन, हमने तो कभी नहीं सुनाया, हमने तो धर्म के नाम पर यही सुना है, आलू मत खाओ, ये मत करो, कांदा बटाटा मत खाओ, ये सब चीजें छोड़ दो, तो बस ये धर्म है। जैन धर्म तो ये कहता है मंदिर आओ, पूजन कर लो, व्रत कर लो, माला कर लो, ये सब है जैन धर्म, तो ये पता नहीं है सम्यक दर्शन आज पंडित जी कौन सी बात ले आए, ये कौन सा धर्म है सम्यक दर्शन, ये क्या होता है? तो उमा स्वामी आचार्य ने समझाया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या? क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी था, ऐसा भी हो सकता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा तो शिष्य कहने लगा कि हमारा देखो सम्यक दर्शन तो है, देखो मैं चश्मा भी नहीं लगाता हूँ, मैं आंखें मेरी बराबर है बिल्कुल, तो सम्यक माने अच्छा और दर्शन माने देखना, क्या? तो सम्यक दर्शन तो अपने बराबर है, क्या? अब ज्ञानवान तो देखो हम पढ़े लिखे तो है नहीं, तो ज्ञान का पता नहीं, देखेंगे जो भी होगा, और ये चारित्र वाली बातें तो आप बता दो तो फिर मोक्ष मार्ग अपने हो जाएगा और क्या। तो महाराज ने कहा अरे भैया तुम किसको सम्यक दर्शन समझ रहे हो, चश्मा लगाने से सम्यक दर्शन नहीं होता, बिना चश्मे के धुंधला दर्शन है, और चश्मा लगाने से सम्यक दर्शन ये दर्शन माने देखना नहीं है, दर्शन माने क्या है? दर्शन माने श्रद्धा, श्रद्धा को दर्शन कहते हैं। दर्शन शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, यहाँ सम्यक दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में, मान्यता के अर्थ में, अभिप्राय के अर्थ में। बौद्ध दर्शन में भी अष्टांगिक मार्ग बतलाया है, बौद्ध दर्शन में मुक्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की, उसमें भी सम्यक दर्शन शब्द दिया उन्होंने, सम्यक दर्शन, सम्यक प्राणायाम, सम्यक योग, सम्यक समाधि, इस तरह आठ उन्होंने अंग बतलाए मोक्ष के लिए। लेकिन वहां सम्यक दर्शन का अर्थ भली प्रकार देखना, इतना अर्थ है। यहाँ जैन परंपरा में सम्यक दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में प्रयोग किया गया, और यहाँ बात की तत्वार्थ श्रद्धानम, किसकी श्रद्धा की बात करते हैं? बोले तत्वार्थ की श्रद्धा, किसकी श्रद्धा, ये क्या है? तो ये सब बातें तो बताएंगे आगे, ये सात तत्व हैं, चौथे नंबर के सूत्र में कहा है। आगे मैं आगे के दो सूत्रों का अर्थ और बतलाता हूँ, फिर बात करता हूँ इस सूत्र के बारे में, तीनों को मिला के बात करता हूँ। तत्व अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आप रिपीट कर सकते हैं सूत्र, पहले मैं बोलता हूँ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वात् श्रद्धानं संसर्जनम्। क्या हुआ अर्थ क्या होगा? तत्वार्थ तत्व अतिलानी। कई जगह तो मैं देखता हूँ इस सूत्र का अर्थ करते हुए लोग कहते हैं सात तत्वों की श्रद्धा का नाम समझे दर्शन है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं तत्व के साथ में अर्थ और जुड़ा। तत्व कहते हैं भाव को और अर्थ कहते हैं पदार्थ को। इन दोनों चीजों को जानने का नाम इनके श्रद्धान का नाम समझे दर्शन है। अकेले तत्व श्रद्धान का नाम समझे दर्शन नहीं है, अकेले अर्थ श्रद्धान का नाम सम्य दर्शन नहीं। देखो जैसे तत्व श्रद्धान मतलब तत्व और अर्थ क्या है, मैं इनको थोड़ा सा समझाऊं, थोड़ा सा क्लियर करूं आपको, सिंप्लीफाई करूं इनको थोड़ा सा। तत्व तो कहते हैं भाव, अर्थ कहते हैं पदार्थ वस्तु। हमें जिसकी श्रद्धा करनी है वो हमारे श्रद्धा का विषय है वस्तु भी होनी चाहिए और उस वस्तु के जो मूल एसेंस है, गुण है, लक्षण है, धर्म है, शक्ति है, वो भी पता होना चाहिए। मतलब दोनों चीजें यदि पता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मैं क्या कह सकते हैं उसको, चूक होने की संभावना है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की संभावना है। जैसे मैं कहूँ आपको आत्मा की बात करें अपन, जीव एक तत्व है, जीव तत्व क्या है तो का जानना देखना ही जीव तत्व है, जानने देखने वाला जीव तत्व है। ठीक है, जीव क्या होता है हमने फटाफट कह दिया, जानने देखने वाला है, जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, ये जीव तत्व को जान लिया हमने कि नहीं अर्थ को भी जानो तब तत्वार श्रद्धा कहलाएगा। हमें पक्का भरोसा है कि जीव कौन होता है जो जानता देखता सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव होता है। अर्थ क्या है? अर्थ माने वस्तु, बोले जानने देखने वाली वस्तु, सुख दुख का अनुभव करने वाली वस्तु कौन सी है ये तो बताओ। क्या ये जानने देखने वाली वस्तु कौन सी है? तो कहा पंडित जी अभी दिखाता हूँ आपको, देखो लैपटॉप के ऊपर यहाँ से मंदिर में कैमरे लग रहे हैं बराबर साफ, ये बिल्कुल वॉच करता है। अरे मूर्ख, ये जानने देखने वाली वस्तु जिसे जीव कहा गया है वो ये वस्तु है अंदर देह वाला विराजमान, वो वस्तु और उस वस्तु का भाव। समझ में आया? हमने गुण जान लिए, वस्तु का नाम जान लिया, लेकिन वो वस्तु को पहचाना नहीं, उसकी शक्ल पता नहीं है तो क्या होगा? वो वस्तु कौन सी है, वो वस्तु क्या है, वो वस्तु कहाँ है, ये पता होना बहुत जरूरी है। माने वस्तु भी और वस्तु के गुण भी। अब हम कहें आत्मा के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, आत्मा के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा क्या होती है ये जानना है, भाव जानना। मैं इस प्रसंग में हमेशा वो सुनाया करता हूँ घटना, एक हमारे पंडित जी सुनाते थे आजादी के समय जब देश आजाद हुआ, इंडिया के आजाद होने की बात करता हूँ, आप लोगों का तो आजादी अभी हुई है जुलाई में, जुलाई आता है दिन, गांधी जी ने जब इंडिया को आजाद कराया तो सबको सारी दुनिया में नाम था उनका, पूरे इंडिया में सब लोग जानते थे, लेकिन टीवी तो उस जमाने में थी नहीं, शक्ल कितने लोग पहचानते थे, शक्ल बहुत कम लोग जानते थे। तो गांधी जी का कहीं सम्मान होना था, सम्मान समारोह था, और गांधी जी ट्रेन में बैठ करके वहां पहुंचने वाले थे, थर्ड क्लास के डब्बे में बैठ करके गांधी जी सफर कर रहे थे और मारामारी थी, बहुत भीड़ थी क्योंकि दुनिया उनके दर्शनों के लिए उमड़ने वाली थी, जाने जो भी था ऐसा प्रसंग था, वो भीड़ थी। और वहां एक व्यक्ति क्या हाथ में चवन्नी लेकर के उछालता है, चांदी की चवन्नी जो उस समय में चलती थी, छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की, जय जयकार करता है वहां। और वही डब्बे में बगल में खड़े हुए महात्मा गांधी उनको धक्का लगाता है और कहता है अरे बुड्ढे हट, मैंने भी टिकट लिया है, देखो आप ये क्या चीज है। वो भाव तो जानता है लेकिन अर्थ नहीं जानता, समझ आ रहा है? भाव मतलब वैल्यू, भाव मतलब मूल चीज वो जानते हैं गांधी जी मतलब क्या व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के बारे में सुना है उन्होंने, लेकिन शक्ल से पहचानता नहीं है तो कितनी बड़ी गड़बड़ होने की संभावना है। उल्टा लगा लो, अर्थ को पहचानता हो तो भाव नहीं जानता, वस्तु को तो पहचानता हूं मैं लेकिन भाव नहीं जानता, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है। एक व्यक्ति ने हमारे से कहा कि पंडित जी आप कौन से मंदिर जाते हो? हमने कहा जैन सोसाइटी हो साउथ फ्लोरिडा, वहां जाते। बोले यार आपका आप मेरा एक काम कर सकते हो क्या? मैंने कहा बताओ। बोले आपके मंदिर में एक व्यक्ति आते कलेक्टर साहब है क्या, उनसे मेरा काम करवाना है। मैं तो नहीं जानता किसी किसी व्यक्ति को, क्यों कोई ऐसा ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है वहां। अरे नहीं नहीं वहीं आते हैं। मैं तो सबको जानता हूँ, रोज जाता हूँ मंदिर और सब लोग मिलते हैं, सब लोग मुझे जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ, मेरे को तो ऐसा ज्ञान नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति हो। अरे नहीं नहीं पंडित जी आपको गलत नहीं हो, ये बात नहीं कराना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं कह यार ये मनुष्य इल्जाम लगा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। एक दिन मिले आए हमारे साथ में मंदिर और उन्होंने कहा ये कलेक्टर साहब, अरे अच्छा ये इनसे तो मैं रोज मिलता हूँ, रोज जल्दी करता हूँ, आप कलेक्टर साहब हैं सर? पता ही नहीं था हमारे, ऐसा हो सकता है ना? जिन व्यक्ति से हम रोजाना जय जिनेन्द्र करते हैं, जिन व्यक्ति से हम आते जाते हुए रोजाना टकराते हैं, परिचय नहीं है उनके पास है। मैं तुमसे रोजाना मिलता हूं लेकिन मुझे ये परिचय नहीं है तुम काम क्या करते हो, मुझे ये परिचय नहीं है कि आप मजिस्ट्रेट हैं, मुझे ये परिचय नहीं है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं, मुझे ये पता नहीं कि आप प्रोफेसर साहब हैं। तो मिलता हूं रोजाना, स्वाध्याय में आते हैं, नाम से भी जानता हूं, पद से नहीं जानता, कोष से नहीं जानता। तो व्यक्ति को तो जानते हैं, माने अर्थ को तो जानते हैं, वो कितना वैल्यूएबल है उसकी वैल्यू नहीं जानते, भाव नहीं जानते उसका। ऐसी मिस्टेक भी हो जाती हो सकती है कभी, मतलब बच्चों को ऐसा एग्जाम्पल देते थे कभी बहुत पुराना कि भाई समझ लो आप किसी बच्चे से कहा हमने यहाँ पानी की बाल्टी रखी और पानी पीना है मुझे, पानी की बाल्टी रखी है और पानी पीना है, तो बाल्टी को उठा के पानी कौन पी सकते क्या करेंगे वो लोग? बच्चे को कहा बेटा गिलास गया, फिर जाते जाते हमने उसको टोका, तू जानते ना गिलास पहचानता है, दो तीन तीन साल का बच्चा था, गिलास गया पहचानता है, यहाँ जानता हूँ। वो गया किचन में गया, सब तरफ देखा, गिलास नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएगा, गिलास नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो गिलास को तो जानता था, उसका भाव नहीं जानता था। फंक्शन क्या है, भाव क्या है उसका? भाव ये है बेटा कि मुझे पानी पीना है, बहुत तेज प्यास लगी है। यदि तुझे गिलास, गिलास का मतलब है जल धारण करने की शक्ति, एक ऐसी चीज, एक ऐसा बर्तन जिससे बाल्टी में से पानी लेकर के पिया जा सके, उसका नाम है गिलास। यदि वो उसका भाव जानता होता तो पांच मिनट लगा करके गिलास नहीं मिलने पर वापस नहीं आता, लोटा ले आता, बर्तन ले आता, प्याला ले आता, है। यद्यपि वो गिलास तो नहीं होता लेकिन भाव समझता था तो काम निकाल सकता था। पॉइंट समझ में आ रही है? समझ लो आप कोई जगह पर हमारे को किसी चीज को कट करना है, किसी चीज को, और उसको कट करने के लिए हमने पूछा कि चाकू है आपके यहाँ? नहीं यार मंदिर में तो चाकू नहीं मिलेगा, चाकू तो नहीं, तो फिर यार क्या मिलेगा? कोई ब्लेड होगी? नहीं ब्लेड भी नहीं है, दे लिया था यार। ये तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई नुकीली चीज चाहिए काम के लिए, तो ऐसा हो सकता स्क्रू ड्राइवर ड्रेस मिलेगा? नहीं पड़ी वो भी नहीं है, तो क्या कुछ तो करो यार आप जुगाड़ जा लेकर के आओ। तो वो ढूंढने के लिए बाहर चला गया, तो पड़ोस में जाकर के उसने कहा स्क्रू ड्राइवर है, कहा नहीं है, लेकिन तुम बताओ तो सही कितनी चाहिए। अब वो ये कहता है कि नहीं नहीं तुम्हारे मुझसे क्या मतलब है कितनी चाहिए, मुझे वहां पर आपको दो ना। कि नहीं नहीं तुम बताओ तो सही कितनी चाहिए, कि मुझे तो उसको काटना है, तुम उसके लिए ऐसी क्या जरूरत है, चक्कू है ना मेरे पास में। पॉइंट समझ में आ रहा है, माने आपने जो उसके अल्टरनेट ढूंढते ढूंढते जिस जगह तक पहुंचे थे, हमारे पास में ऑरिजिनल ही चीज है ना, तुम अल्टरनेट ढूंढते ढूंढते उसको तलाश रहे हो। आपको यदि भाव पता है उस चीज का तो काम हो सकता है, और यदि आपको भाव पता नहीं है तो काम नहीं हो सकता है। ये अकेले तत्व श्रद्धांत को उमा स्वामी आचार्य ने सम्य दर्शन नहीं कहा, यहाँ तत्व और अर्थ दोनों के श्रद्धांत को सम्य दर्शन कहा। ठीक है, तत्व कौन से हैं? वो चौथे सूत्र में कहा, जिसमें सिर्फ नाम उल्लेख किए हैं, जीवा जीवास्त्र बंध संवर निर्जरा मोक्षा सत्वम। बोलो लंबा हो गया, लिखा तो हिंदी में ही है वैसे। जीवा जीवास्त्र बंध संवर निर्जरा मोक्षा सत्वम। जीवा जीवास्त्र बंद संवर निर्जरा मोक्षा सत्वम। ठीक है, सब नाम है बिल्कुल, कुछ नहीं है। जीव अजीव आश्रव बंद संवर निद्रा मोक्ष तत्वम, सातों के नाम है बस। ये सात तत्वों के नाम बतला दिए, आप लोगों को पता थे। बीच में एक सूत्र छोड़ा अपन ने, सूत्र नंबर तीन। प्रश्न था शिष्य का कि ये सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है, ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है, ये सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो क्या होता है। तो कहा दो प्रकार हैं, दो तरह के हैं। ये तन्निसर्गादभिगमाद्वा, सूत्र है तन्निसर्गादभिगमाद्वा। तन्नी 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 डबल नए है वहां, तन्निसर्गा तन्निसर्गा तत्निसर्गा तन्निसर्गात् अधिगमात् तन्निसर्गात् अधिगमाद्वा तन्निसर्गात् अधिगमाद्वा। यार ये क्या पढ़ा रहे हो पंडित जी, आप क्या कर रहे हो? ये कौन से सूत्र भी लेकर के बैठ गए, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ, ये क्या चल रहा है भाई साहब। तत्कार सूत्र का अर्थ जानना जरूरी है, सत्वर सूत्र बहुत महिमावान है भाई। ये सत्वर सूत्र की महिमा में ऐसे कहते हैं, उपवास का फल लगता है इसका पाठ करने मात्र से, बोलने मात्र से। पंडित करूंगा थोड़ी बहुत चर्चा इसकी। देखो क्या कहते हैं यहाँ, तन निसर्गात गधि गमाद्वा, तन निसर्गात गधि गमाद्वा, तन निसर्गा कभी गमाद्वा। क्या कहा? तत् माने वह, अगर उसको तोड़ेंगे इसको टुकड़े करो देखो थोड़े थोड़े से, क्या कह रहे तन तत्, सबसे पहले तो निकलेगा तय है, और आगे जो आधा नए है ना, तन तत् हो जाएगा। संस्कृत में क्या होता है, त का न हो गया ये जोड़ने से बदल गया था, तो तत् माने वह, वह सम्यक दर्शन। फिर नी दिख रहा है आगे, नी दिख रहा है, निसर्ग निसर्ग दिख रहा है, निसर्गात तो दस दस का लेना वहां तक, निसर्गात माने निसर्ग से, निसर्गात निसर्गात दिख रहा है आपको क्या है, तत् निसर्गात माने निसर्ग से। और फिर इसमें से निकला अ, और निकल गया अधिगमात वा, अधिगमात वा, तत् निसर्गात और अधिगमात वा, माने वो सम्यक दर्शन निसर्ग से भी होता है और अधिगम से भी होता है। क्या है साहब ये, क्या कहां से शब्द आ गए हैं? न हमने अपनी लाइफ में निसर्ग शब्द सुना है, न हमने अपनी लाइफ में अधिगम शब्द सुना है। कोई बात नहीं, लैंग्वेज है, शब्द है उस लैंग्वेज के, निसर्ग कहते हैं स्वभाव, नैसर्गिक स्वाभाविक, निसर्ग माने स्वभाव। तो एक सम्यक दर्शन तो ऐसा है जो स्वभाव से होता है, अपने आप होता है, अंदर से होता है, वो कौन सा सम्यक दर्शन कहलाएगा? कौन सा? निसर्गज। ठीक है ना, ख्याल में आती है सबको बात? पहला हो गया निसर्गज, फिर दूसरा है अधिगम। अधिगम कहते हैं उपदेश, ज्ञान। तो जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति दूसरों के उपदेश पूर्वक हो वो कहलाती है अधिगमज। और जिसमें बाहर में कोई उपदेश देने वाला नहीं दिखाई दे रहा, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बाहर में निमित्त मिला, बस वो गया सम्यक दर्शन, वो कहलाएगा निसर्ग सम्यक दर्शन। दो तरह से हो सकते हैं, समझ रहे हैं भाई हम? और आप लोगों के समझ में आ रहा है, सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा से दो प्रकार का है। पहले प्रकार का नाम बताइए निसर्गज, दूसरे प्रकार का नाम बताइए अधिगमज। निसर्गज माने स्वभाव से, निसर्गज माने अधिगमज माने उपदेश से। ठीक है, तो किसी को सम्यक दर्शन स्वभाव से होता है, किसी को सम्यक दर्शन उपदेश से होता है। कहीं कहीं आपको शास्त्रों में पुराणों में ऐसे कथन मिल जाएंगे, ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें किसी मुनिराज ने उपदेश दिया, किसी संत ने उपदेश दिया और उसको सम्यक दर्शन हो गया। हाँ, महावीर भगवान का खेल के पर्याय में जो हुआ, खेल के हाथी की पार्थ स्वामी को हाथी की पर्याय में हुआ था, महावीर स्वामी को शेर की पर्याय में हुआ था, किसी मेंढक को हो जाए, किसी अधिकम अधिकम। हाँ, जब भी उपदेश से होगा, जब भी देखने वालों को लग रहा है कि ये इनके उपदेश से सम्यक दर्शन हुआ, ये कहलाता है अधिगम सम्यक दर्शन। ठीक है, और जहां बाहर में कोई उपदेश दाता नहीं था और अंदर में सम्यक दर्शन हो गया तो कहलाता है निसर्ग सम्यक दर्शन स्वभाव से।
जो हुआ
कुछ किए, बिल्कुल स्वभाव से जो किया हो, ऐसा नहीं जादू मंत्र जैसे अपने आप हो गया हो, अपने आप नहीं, विचार के रूप में चलेगा ही, बिना उसके नहीं होगा। बस ये बाहर में नहीं था कोई उपदेश दाता, एक बात और समझना, मार्मिक बात है। दो प्रकार के सम्यक दर्शन है, किसी को निसर्ग होता है, किसी को अधिगमज होता है। ये मैं बता रहा हूँ, कोई कोई देखिए आप जरा क्या कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। कई कई पुस्तकों में ऐसा मिलेगा कि गुरु के उपदेश के बिना नहीं होता, सच्चे गुरु का उपदेश ही है, तो फिर निसर्गज का क्या होगा? और यदि अधिगमत नहीं होता है तो निसर्गज बेकार हो गया, और स्वभाव से हो जाता है तो अधिगमन की जरूरत नहीं रही, उपदेश की जरूरत नहीं रही, तो क्या होगा? मैं क्या करूं, कुमार स्वामी आचार्य से पूछूं? है, और ये इन्होंने भाव और क्या दिया, अथवा ये जो है ना लास्ट में द्वा द्वा जो लिया है, तन निसर्गात अधिगमात द्वा, अधिगमात वा वा अथवा, या तो निसर्गज होगा या अधिगमज होगा। लोग अब क्या करें, मेरा कोई बात नहीं है, देखो आप मैं तुझे लिखा हूँ बताऊ। अब सुनो बात ये है कि जो निसर्ग सम्यक दर्शन होता है वो अधिगमज भी होता है, और जो अधिगमज होता है वो भी निसर्गज होता है। ये जो सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या जब कुछ आचार्यों ने की बाद में, फर्दर उमा स्वामी आचार्य के बाद एक्सप्लेन जब किया इनको, 2000 साल पहले उमा स्वामी आचार्य सूत्र लिखे, अब जब व्याख्या करने वाले दूसरे दूसरे आचार्य हुए तो उन आचार्यों ने इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा सुनो, उपदेश से होने लग जाए तो फिर सुनकर के हुआ, उसने आत्मा का सबका स्वभाव तो देखा नहीं होगा, वैसे ही हो गया सम्यक दर्शन उपदेश से ही। हाँ नहीं भाई साहब, उपदेश पूर्वक हुआ है, लेकिन उपदेश पूर्वक अपने स्वभाव के दर्शन से हुआ है। तो फिर अतिगमन क्यों कहा? कि इसलिए कहा कि उपदेश की मुख्यता दिखाई दे रही है ना। कौन हाईलाइट हो रहा है यहाँ इस पिक्चर में? इस पिक्चर में ये हाईलाइट हो रहा है, मुनिराज दोनों उपदेश दे रहे हैं और शेर को सम्यक दर्शन हो गया। तो इस पिक्चर में क्या हाईलाइट हो रहा है? उपदेश हाईलाइट हो रहा है, अधिगमन सम्यक दर्शन। लेकिन उपदेश सुनने से यदि होता हो तो मारी जी को तो नहीं हुआ था, और वहां तो उपदेश देकर घटना सुन रहा था। इसलिए बोलो यहां तो मुनिराज का सुन रहा है और वहां तो तीर्थंकर का उपदेश सुन रहा था, और व्यक्ति कौन था? यही तो था, महावीर स्वामी का जीवी तो था। बोलो आप तो मारी जी की अवस्था में तो नहीं हुआ और शेर की अवस्था में हुआ, ये क्या चक्कर है? यदि उपदेश से होता है तो वहां चांस ज्यादा थे, और चांस तो इतने ज्यादा थे। क्या इतने ज्यादा चांस थे? बुलवा दादा की क्या बात करते हो? अकेले दादा की, दादागिरी की बात नहीं है, उसके पिता की भी चलती थी पूरे क्षेत्र में, चक्रवर्ती थे, दादा तीर्थंकर थे, दादा के पिता, दादा के पिता पर दादा अंतिम कुलकर थे, उसके चाचा कामदेव थे, पहले कामदेव बाहुबली, उसके एक चाचा गणधर थे वृषभ सेन, उसके एक और चाचा अनंत जी ने सबसे पहले मोक्ष जाने वाले थे, और उसके भाई ऐसे थे 923 जो नित्य निगोलते निकले थे, सदवा मोक्षगामी थे। सोचो तो सही, उसकी बुआ क्या कहते हैं आप, हुई है ब्राह्मी और सुंदरी। सोचो आप आई कहें गणनिया, क्या स्थिति थी उनकी, कैसा फैमिली बैकग्राउंड उसका, कितना स्ट्रांग था, और फिर भी उसको वहां सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मुझे तो लगता है भरत जी की थोड़ी सी ढील रही, फिर अच्छे संस्कार नहीं दिए, ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा छोरा हाथ से निकल गया। ऐसे माहौल के अंदर नहीं हुआ, इन्होंने इसका मतलब थोड़ी ज्यादा ही छूट दे दी, चक्रवर्ती थे, अरे तू तो ऐसे आराम करते, ये क्या कमी है यार, ऐसा कुछ हुआ होगा? उपदेश की सरलता वहां थी, बोलो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और उपदेश यहाँ मिला जंगल में, हिरण को फाड़ के खा रहा है, यहाँ सम्यक दर्शन हो गया, तो कैसे हुआ सम्यक दर्शन? देखने में तो लगता है उपदेश से हुआ, लेकिन सच्ची बात यह है कि उपदेश सुनने पर अंदर में जब श्रद्धा में परिवर्तन हो गया तो सम्यक दर्शन हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन कान से सुनने का नाम नहीं है, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा के बदलने का नाम है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा बदलने का नाम है, तत्वा श्रद्धान का नाम है, तो कैसा कहलाएगा वो? अधिगमज कहलाएगा, लेकिन निसर्ग तो था ही, स्वभाव का अवलंबन तो, इसका मतलब उपदेश से जो सम्यक दर्शन होता है उसमें स्वभाव का अवलंबन तो है ही, ठीक है। अधिगमज में निसर्गज कंपलसरी हो गया, एक पॉइंट। अब उल्टा लगाओ, जिनको निसर्गज सम्यक दर्शन हुआ है, किसी गुफा में बैठे हैं, किसी मंदिर में बैठे हैं, किसी टेकनी पर बैठे हैं, यहाँ अपने सामने बैठ करके भगवान के सामने बैठे हैं, उपदेश दाता कोई नहीं है और सम्यक दर्शन हो गया, ये कैसे हो सकता है? स्वभाव से हो गया परिवर्तन, सम्यक दर्शन हो गया। तो कहा नहीं सुनो, ये जो स्वभाव से सम्यक दर्शन होता है इसके लिए भी भूतकाल में पिछले जन्मों में कभी न कभी सच्चे गुरु का उपदेश सुनने की अनिवार्यता है, कंपलसरी है। तो अभी तो हुआ है नैसर्गिक, अभी तो हुआ है निसर्ग सम्यक दर्शन, लेकिन पूर्व की चेतना याद आई है उसको यहाँ बैठे बैठे, क्या आपने सुना इस तरह का? पिछले भाव याद आ जाते हैं, जाति स्मरण हो जाता है, केवल जी के बारे में कहा है ऐसा, उन्होंने घटना देखी और देख करके पुराने भाव याद आ गए, बोलो सब दिख जाता है इस तरह का, हो गया सम्यक दर्शन, पूर्व का उद्देश्य ध्यान आ जाता है, पूर्व की घटनाएं याद आ जाती है, पूर्व का जाते स्नान हो जाता है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हो तो चिंता मत करना, नरक में जाकर के भी देख लूंगी संजीव को ऐसा बोलते तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। वहां का सम्यक दर्शन है बहुत सरल, लेकिन माने यहाँ तो हम सम्यक दर्शन के लिए इतने भी मगजमारी करते कठिन रहता है, और नरक में इतना सा याद आ जाता है ना रमेश भाई, सिर्फ इतना सा याद आ गया, वो उपदेश याद आ गया, पहले ऐसा उपदेश सुना था तो सम्यक दर्शन हो जाता है नरक में। ये बहुत अच्छी बात है, फिर तो सम्यक दर्शन लेने के लिए नरक में चले अपन, बहुत ईजी है, इसमें क्या हो गया, शॉर्टकट है ना ये, तो हम इतना याद कर करके मरे जाने पड़ने की, आप पहले दिन ही बता देते किन्ने बेकार कर दिया हमारे वहां जा। लेकिन सुनो, याद आने से सम्यक दर्शन हो तो जाता है स्वभाव के अवलंबन पूर्वक, लेकिन याद आना इतना कठिन है कि वहां नरक की वेदनाओं में और तकलीफ में इस जीव को स्वभाव का स्मरण नहीं होता, पुरानी बात याद नहीं आती है, लगता तो आसान है और यहाँ भी क्या है बताओ मेरे को, यहाँ भी कौन सा कठिन है, आपने क्या बताया महेंद्र भाई इनको, कुछ कहा कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 7 दिन के उपवास करने पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कहा आपने कभी, तो क्यों कठिन लग रहा है सबको, निजवान निज बुद्धि आए तो परिभ्रमण दशा चले, परिभ्रमण दशा चले माने मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए, माने सम्यक दर्शन हो जाए, इसका नाम है परिभ्रमण चलना, ये कब निजमान निज बुद्धि था, अपने में अपने पन की यदि बुद्धि यदि होती है तो सम्यक दर्शन हो गया, इसका नाम सम्यक दर्शन है, बहुत सरल है भाई साहब, सम्यक दर्शन कोई कठिन काम नहीं है, हमने हवा बना रखा सम्यक दर्शन वो सम्यक दर्शन, अभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कोई पीछे बैठे हुए व्यक्ति कहे कि मुझे सम्यक दर्शन है, ये होगा सम्यक दर्शन, मैं 20 साल से आ रहा हूँ मुझे तो हुआ नहीं, कल से आया है, सब सम्यक दर्शन में सालों लगते हैं, माने ऐसे लगता है सम्यक दर्शन माने कोई बहुत बहुत कठिन, बहुत सम्यक दर्शन माने बहुत कठिन काम है, तुम्हें कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन, ऐसे हो जाता है, कठिन नहीं है सम्यक दर्शन, इसका मतलब जिनको स्वभाव से प्रकट होने वाला निसर्ग सम्यक दर्शन होता है उनके जीवन में भी पूर्व काल में गुरु की देशना सुनी हुई है, इसलिए वो अधिगमज पना भी उसमें गर्भित है, अधिगमज पना भी उसमें शामिल है, तो जो निसर्गज होता है वो अधिगमज भी होता है, जो अधिगमज होता है वो निसर्गज भी होता है, लेकिन सामने प्रैक्टिकल वर्तमान में एक ही दिखेगा, जहां उपदेश की मुख्यता दिख रही हो उसको अधिगमज कह देंगे, और जहां उपदेश दाता कोई नहीं दिख रहा हो उसे निसर्गज कह देंगे, समझ में आ गया, कठिन तो नहीं है, आप सोचिए उपदेश के बिना यदि सम्यक दर्शन मानेंगे तो एक बहुत बड़ी सैद्धांतिक गड़बड़ी आ जाएगी, किताब यदि निसर्ग सम्यक दर्शन माना और अधिगमज नहीं माना, किताब नहीं नहीं कभी नहीं सुनी थी, हम तो कभी नहीं मानते, और स्वभाव से हो गया सम्यक दर्शन, क्या जरूरत है, पहले सुनी थी नहीं सब बेकार की बातें करते, कुछ नहीं अनादिकाल से आज तक कभी नहीं सुनी है सुने ये चर्चा, और अभी समझ लो आप इसको स्वभाव से सम्यक दर्शन हो गया, निसर्ग इट्स इम्पॉसिबल, क्यों, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियां कही है, उसमें देशना लब्धि कंपलसरी, 5वीं कंपलसरी है, क्षयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोगिकरण, 5 लब्धियां, ये प्रोसेस है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, यदि नहीं ख्याल में आया हो तो ज्यादा वजन मत देना अपने दिमाग पर, कभी अवसर मिलेगा तो 5ों को समझाएंगे, क्षयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोगिक और करण, और फिर भी यदि आप सुनना चाहते हैं तो 2-3 मिनट के अंदर मैं समझा भी देता हूं और आ जाएगा समझ में, कोई कठिन बात नहीं, क्षयोक्षम जरूरी है सबसे पहले, इसका मतलब बुद्धि होना, इतना था सम्यक दर्शन के लिए सैनी पंचेंद्रीय होना जरूरी, ये क्षयोक्षम अपनी जीवों को नहीं होता, ठीक है, तो तैनी पंचेंद्रीय जीवों को सम्यक दर्शन होगा माने क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि माने बुद्धि तो थी क्या है कि मन दशा जरूरी है, शिवक्षम तो बहुत है लेकिन विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा। विशुद्धि क्या चीज है? विशुद्धि होगी तो समझ नहीं आएगा अंदर क्या है, मंदिर में क्यों आएगा, रोज फोन कर रहे हैं फिर भी नहीं आता है, घर में बैठ के टीवी के चैनल घुमाता है कि क्यों नहीं आ रहे हो, अरे क्या है, विशुद्धि नहीं है। शेवक्षण तो था, विशुद्धि नहीं है। और यहाँ आने के बाद विशुद्धि तो थी और बुद्धि काम नहीं कर रही तो शेवक्षण नहीं है। शेवक्षण नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा में, और विशुद्धि नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा, समझ में और समझ ने। तो हमारे पास में समझ ने की बुद्धि भी है, समझ ने भी आए हैं और समझ में भी आ सकता है। अब तीसरा नंबर, देशना माने उपदेश। शेवक्षम हो, अजयों की मंदता हो, गुरु के उपदेश को सुने, ग्रहण करे, देशना लगती। फिर चौथे नंबर पर गुरु के उपदेश को सुनकर, तीन नंबर पर तो सुना था, अब चौथे नंबर पर प्रायोग्य लब्धि। व्हाट इज दिस? प्रयोग, प्रयोग, प्रैक्टिकल। सुनते चले गए काम नहीं चलेगा, सुनने के बाद आपने उसका चिंतन कितनी देर किया, सुनने के बाद उसका मंथन कितने समय किया तो काम चलेगा। भाई साहब सुनते तो बहुत हो, आपके मंथन में भी चलना चाहिए, चिंतन में भी चलना चाहिए, भोजन में भी चलना चाहिए, उठने के बाद भी थोड़ी देर गूंजनी चाहिए ये बातें, क्या बातें चली, क्या बातें सुनी, क्या बातें हुई, ये सब कहलाएगा चिंतन, मनन, मंथन, ध्यान, एकाग्रचित्त होकर के बैठना, उनका बातों का विचार, ये क्या कहलाएगा? प्रायोग्य लब्धि। और आफ्टर दैट जब प्रोसेस अंदर में बढ़ता है, कषायें घटने लगती है, कषायों की स्थिति अंत कूड़ा थोड़ी वगैरह होती 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 होते अधिकरण अपूर्णकरण अनिवर्तीकरण के परिणामों के अंदर की स्थिति बदलती है, तो करण लब्धि होते हुए सम्यक दर्शन 100% अनुभवात्मा चौथा गुणस्थान। ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस के अंदर एक जो आया ना बीच में वो था देशना लब्धि। देशना लब्धि मतलब गुरु का उपदेश। अब बतलाओ जिन लोगों को ये नैसर्गिक सम्यक दर्शन हुआ, नैसर्ग सम्यक दर्शन, उपदेश जरूरी है कि नहीं? देशना लब्धि का क्या होगा? तो अभी उपदेश नहीं मिल रहा है, पूर्व में कभी न कभी सुना था। तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन के भेद, सात तत्वों के नाम, सम्यक दर्शन, तत्वाश्रद्धान और मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इतनी चर्चा हम लोग यहाँ कर चुके हैं। आगे भी और बहुत मार्मिक बातें हैं, सर इन सब विषयों को और आगे बढ़ाए।